बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं आज का ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा मसीही नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और अपने जीवन में प्रभु में बढ़ रहे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और मैं उन नए मित्रों का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। प्रियो, मैं आपको फिर से स्मरण दिला दूं कि हम पहले कुरिन्थियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जो नए नियम की पत्री है जिसे पौलुस ने लिखा है। और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने तीन प्रकार के लोगों के बारे में बातें की है, प्राकृतिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य और दैहिक मनुष्य, अर्थात विश्वासी, दैहिक विश्वासी जो संसार की रंग रैलियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और उसे पहचानने की बातों को भी उसने हमें बताया है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मसीह के सेवक होने की शर्तें मसीह आचरण के निमित्त बाध्य करती हैं। मेरे मित्रों, कुरिन्थ की कलीसिया में उत्पन्न विभाजन के संदर्भ में पौलुस के संदेश का यह अंतिम अध्याय है। इस अध्याय में वह मसीह के सेवक के लिए शर्तें प्रतिपादित करता है और यही मसीही आचरण का आधार भी होगी। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। जी हाँ, आइए हम इस अद्भुत पद पर कुछ पल विचार करें। हम सब मसीह के सेवक हैं। प्रत्येक विश्वासी मसीह का सेवक है। कलीसिया के सदस्य कहते हैं वह हमारा पादरी साहब या पास्टर है। मैं आशा करता हूँ कि इसकी अपेक्षा वह मसीह का सेवक हो, क्योंकि वह उसी को लेखा देगा। जी हाँ, आप भी मसीह के सेवक होने के कारण उसे लेखा देंगे। आप बच नहीं सकते। मित्रों, हम सब सेवक हैं। अब आप चाहें या ना चाहें, आप एक प्रचारक हैं। इस बात पर मुझसे रुष्ट ना हो। हमारे आराधनालय के निकट एक व्यक्ति रहता है। वह मध्य व्यवसायी का काम करता है। वह अपनी माता के साथ रहता था। उसकी माता एक अच्छी मसीह महिला थी। उसने मुझसे निवेदन किया कि उसे परामर्श दूं या सलाह दूं। एक दिन जब मैंने उसे सड़क पर लड़खड़ाते हुए देखा तो उसे घुमाकर अपने अध्ययन कक्ष में ले आया। जब वह बैठ गया तब मैंने उससे कहा कि वह कैसा दुख का कारण है। वह मेरी हर एक बात से सहमत था। उसके पश्चात मैंने उससे कहा, क्या आप जानते हैं कि आप एक प्रचारक हैं? वह तुरंत खड़ा हुआ और कहने लगा, मुझे यह नाम मत देना, अन्यथा मैं तुम्हें मारूंगा। वह एक शराबी कहलाने में आपत्ति नहीं दिखाता था, परंतु जब मैंने कहा कि वह एक प्रचारक है, प्रचारक के नाम से वह निश्चित ही रुष्ट था। हम सब वास्तव में प्रचारक ही हैं। मैंने उससे कहा, हम अपने जीवन आचरण से संदेश प्रसारित करते हैं। आप संसार को और अपने आसपास के लोगों को अपने जीवन से कुछ न कुछ अवश्य ही दर्शाते हैं और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मैं अपना जीवन आपके लिए और आप अपना जीवन मेरे लिए जीते हैं। जी हाँ, यह ऐसा ही है। हमारे जीवन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह में विश्वास करते हैं तो आप सब मसीह के प्रचारक हैं। आपका जीवन क्या संदेश देता है? आपको लोग किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ध्यान दीजिए, मसीह का सेवक परमेश्वर के भेदों का भंडारी है। पौलुस के युग में भंडारी अपने स्वामी के संपूर्ण कुटुंब का प्रबंधक होता था। उसके हाथ में घर, भोजन, वस्त्र आदि सब का प्रबंध करना होता था। वह परिवार के सदस्यों को आवश्यकता की वस्तुएं देता था। ठीक इसी प्रकार मसीह का सेवक कुटुंब के सदस्यों में परमेश्वर का वचन बांटे। यहाँ भी वही शब्द भेद आया है। आपको स्मरण होगा कि भेद का अर्थ है वह बातें जो अब तक प्रकट नहीं थी, अब प्रकट की गई है। प्राकृतिक मनुष्य भेद की बातें नहीं समझ सकता है, केवल परमेश्वर की आत्मा ही महिमा की बातों को लेकर हम पर प्रकट करता है। यहाँ भेद का अभिप्राय सुसमाचार परमेश्वर के वचन से है, क्योंकि हम परमेश्वर के भेद के भंडारी हैं, इसलिए हमें इस भेद को सुसमाचार को प्रसारित करना है। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में अपने भेद गर्भित दृष्टांतों के अंत में यीशु ने कहा, मत्ती 13:51 में, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ, मैं सोचने पर बाध्य हूँ कि उस समय वे नहीं समझे थे। यीशु स्पष्ट नहीं करता है कि वे समझे थे या नहीं, परंतु वह उनसे आगे यह भी कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 13:52 में, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यही कार्य परमेश्वर के भेद के भंडारी को करना है, परमेश्वर के वचन से नई और पुरानी बात उभारना है। बाइबल अध्ययन का उपदेश सुनने के बाद लोग मुझसे कहते हैं, यह तो पुरानी बात है, मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैं उन्हें उत्तर देता हूँ, मैं भंडारी हूँ जो नई और पुरानी बातें उभारता है। मेरे प्रियो, आज मैंने पुरानी बात का एक अंश प्रस्तुत किया है। यह मेरा उत्तरदायित्व है कि पुराना वरन नया दोनों को उभारूं। जी हाँ, परमेश्वर के भेद के भंडारी की यही बुलाहट है, और मैं इससे बड़ी किसी बुलाहट के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों के पत्र 4:2 को। लिखा है, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। ध्यान दे, भंडारी के लिए आवश्यक नहीं कि वह वाक्पटु हो या उसके पास अनेक वरदान हो, आवश्यक तो यह है कि वह विश्वास योग्य पाया जाए। बहुत लोगों को एक विशेष दिन प्रतिफल प्राप्त होगा, परंतु इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई महान काम किया था, उनके पास कोई अद्भुत वरदान था, परंतु इसलिए कि वे अपने काम में निष्ठावान थे। जी हाँ, कलीसिया की पासवानी या सेवकाई के वर्षों के अनुभव से बहुतों ने इस बात को सीखा है कि कुछ विश्वास योग्य जन सदैव उपस्थित रहते हैं। मैं उन पर निर्भर कर सकता हूँ और जानता हूँ कि उनकी नींव क्या है। 1 कुरिन्थियों के पत्र 4:3-4 में आगे लिखा है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बात बहुत छोटी बात है, तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मेरे मित्रों, इन दो पदों में 3 न्यायासनों का उल्लेख किया गया है जिनके समक्ष हमें खड़ा होना होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पदों का भेद कठिन है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इनमें लिखा है कि आपको मेरा न्याय करने की आवश्यकता नहीं है और मुझे अधिकार नहीं कि आपका न्याय करूं, क्योंकि हमें एक सर्वोच्च सिंहासन के समक्ष या सामने खड़ा होना पड़ेगा। आइए देखें 1 न्यायासन, सत्र न्यायालय, आपके बारे में मनुष्य के विचार। पौलुस कहता है, मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है, तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। फिलिपुस अपने अर्थानुवाद में इसी बात को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, सच तो यह है कि तुम या कोई भी मनुष्य मेरे बारे में क्या कहता है उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह शाब्दिक अनुवाद तो नहीं है, परंतु व्याख्या अति उत्तम है। मेरे मित्रों, यह एक विशिष्ट कथन है और ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस समाज में अव्यवहारिक प्रवृत्ति रखता है, तथापि पौलुस अन्यों के विचारों के प्रति उदासीन या विरोधी नहीं था। वह उसके साथियों की राय के प्रति आग्रह नहीं था। आलोचकों द्वारा चुनौती दिए जाने पर उसने अपनी प्रेरिताई को भावनाओं के प्रदर्शन द्वारा सुरक्षित किया था। झूठी बातों के द्वारा उसे ठेस पहुंची थी। पद 11-13 में वह इसे प्रकट करता है। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं के खुरचन के समान ठहरे हैं। मेरे मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं कि पौलुस को लोगों की बातों से कैसी ठेस पहुंचती थी, परंतु उसका जीवन उनकी राय पर आधारित नहीं था। वे उसकी जीवन नैया की पतवार नहीं थे। जी हाँ, हमें भले लोग या बुरे लोग मिलेंगे। हम सब मनुष्यों के न्याय के समक्ष हैं। हम इससे बच नहीं सकते। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति ने कहा, इस राष्ट्र में जनता की राय की सर्वोपरि है। ध्यान दीजिए, इस राष्ट्र में जनता की राय ही सर्वोपरि है। दुर्भाग्य से यह सच है। मनुष्य की राय को स्वीकार करने में या अपने विरोधियों की आलोचना से दबकर उन्हें मान लेने में बड़ा संकट है। हमारे अधिकांश न्यायालय न्याय की अपेक्षा जन समूह की मान्यता पर चलते हैं। राजनेता भी जन समूह ही की बात मानते हैं। कुछ लोग तो सिद्धांतों, सम्मान और मान मर्यादा की भी बलि चढ़ा देते हैं। मेरे प्रियो, जॉन मिल्टन एक अंग्रेजी कवि ने कहा, एक कुलीन ज्ञानी की परम दुर्बलता प्रसिद्धि की लालसा है। जी हाँ, दुर्भाग्य से आज अनेक मनुष्य इसकी खोज में है। न्यूयॉर्क ट्यूशन नामक पत्रिका में होरेस ग्रिली ने कहा, प्रसिद्धि भाप है, ख्याति दुर्घटना है, धन के पंख होते हैं, आज उत्साहित करने वाले काल कोसेंगे, चिरस्थायी एक ही बात है, चरित्र। किसी और ने कहा, हम में से अधिकांश जनों की समस्या यह है कि हम आलोचना द्वारा बचने की अपेक्षा प्रशंसा द्वारा नाश होना पसंद करते हैं। मैं मानता हूं कि यह भी सच है। मेरे प्रियो, यद्यपि पौलुस मनुष्यों की राय के प्रति संवेदनशील था, वे उसके जीवन के मार्गदर्शक या सिद्धांत नहीं थे। मेरे दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे। दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा न्यायासन है उच्च न्यायालय। यह अपने विवेक का न्यायालय है। मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। क्या विवेक एक सुरक्षित मार्गदर्शक है? पौलुस कहता है कि वह नहीं है। हमें आत्मा के मार्गदर्शन में रहना है। हम उत्पत्ति की पुस्तक में विवेक के मार्गदर्शन के युग को देख चुके हैं, जहां अंतिम परिणाम जल प्रलय का दंड था। विश्वासियों में ज्योतिर्मय विवेक होना चाहिए था। जब विवेक हमें धिक्कारे और कहे कि हम गलत हैं, तब हमें उसकी सुनना चाहिए। तथापि हमारा विवेक, हमारी मनमौजी जीवन शैली निस्सारता को स्वीकार भी करता है, हमें प्रसन्न भी करता है। ऐसे समय में हमें सावधान रहना है। हम सब इसे न्यायासन के समक्ष खड़े रहते हैं या गिरते हैं। मेरे प्रियो, एक और अंग्रेजी कवि लोग फेलो ने कहा, भीड़ग्रस्त सड़कों के कोलाहल में नहीं, जन समूह की पुकार और प्रशंसा में नहीं, परंतु हमारे भीतर विजय या पराजय निहित है। एक सत्यनिष्ठ मनुष्य अन्य की राय पर नहीं चलेगा, परंतु वह जो उचित समझता है वही करेगा। यह एक साहसी आचार है, यह एक यथार्थ नियम है, परंतु पौलुस कहता है कि उसने इसका अनुपालन नहीं किया। मेरे मित्रों, लिखा है, मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 4:4 में। इसका अर्थ नहीं कि पौलुस को अपने किसी चूक का बोध था। इसके विपरीत वह कहता है कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। यह मानवीय प्रवृत्ति है कि अन्यों के साथ कठोर और स्वयं के साथ कोमल व्यवहार रखे। यही दाऊद की समस्या भी थी। वह दूसरे में तो बुराई देख पाया, परंतु स्वयं में नहीं देख पाया। हमारी क्या स्थिति है? जब कोई अपने विचारों पर अटल रहता है तो हम उसे झगड़ालू कहते हैं, परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसे अपने मान्यताओं के प्रति साहस कहते हैं। दूसरे तो विभाजन करते हैं, समस्या खड़ी करते हैं, परंतु हम सही बात पर अटल कहलाते हैं। मेरे मित्रों, आराधना में न आने के कारण अन्य मनुष्य भ्रष्ट हैं, परंतु यदि हम आराधना में न जाएं तो हमारे पास उचित कारण है। हम अपने साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करते हैं, हम अपने को सदैव ही अगुवाई की भूमिका में रखना चाहते हैं और अधिकतर उसे भ्रष्ट कर देते हैं। नहीं, हम अपने समक्ष न तो गिरते हैं और न ही खड़े रहते हैं। परमेश्वर इस न्यायालय, विवेक के न्यायालय के निर्माण को बदल सकता है। तो आइए अब हम देखेंगे तीसरा न्यायासन, जिसके समक्ष सबको खड़ा होना है। मेरा परखने वाला प्रभु है। एकमात्र स्वामी का न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। यह मसीह का न्यायासन है और पौलुस कहता है कि एक दिन वह मसीह के सिंहासन के समक्ष प्रकट होगा। हम में से हर एक जन वहां खड़ा होगा, उस सिंहासन के समक्ष। कुरंथ की कलिसिया को लिखे अपने पत्र अध्याय 5 में वह इस विषय पर अधिक चर्चा करेगा। वहां किस बात का न्याय होगा, यह तो हम जानते हैं कि वह हमारे पापों का न्याय नहीं होगा, क्योंकि हमारे पाप इतने दूर कर दिए गए हैं जितना पूर्व से पश्चिम दूर होता है। देखिए भजन संहिता 103 उसके 12 पद में, हमारे पाप मसीह के लहू के नीचे ढांक दिए गए हैं और परमेश्वर उन्हें स्मरण नहीं रखता है। विश्वासी उसके भंडारे के उत्तरदायित्वों के लिए परखा जाएगा। हमारी संपूर्ण संपदा, देह, धन संपदा, दान आदि न्याय के विषय होंगे। अतः विश्वास योग्य भंडारी होना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, सच तो यह है कि हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। हम पहले सीख चुके हैं कि सब कुछ मसीह का है और हम भी उसी के हैं। हम उसके साथ सहकर्मी हैं। अध्याय 3 के अंत में हमने देखा था कि सब कुछ हमारा है। पौलुस हमारा है, अपोलुस हमारा है, जॉन केल्विन हमारा है, जॉन वेस्ली हमारा है और मार्टिन लूथर भी हमारा है। यह संसार हमारा है। हम इसके सौंदर्य, दृश्य, पहाड़, पेड़ पौधे, समुद्र, वरन जीवन ही का आनंद ले सकते हैं। मेरे मित्र जेम्स, मैं आज मरना नहीं चाहता। क्या आप मरना चाहते हैं? परंतु मृत्यु ही हमारी है। मृत्यु से हम अलग नहीं जा सकते। डॉक्टर पार्कर ने कहा, मृत्यु हमारी है, वह आपकी अपनी है। मृत्यु आप पर प्रभुता ना करे, आप उस पर प्रभुता करेंगे। जी हाँ, मृत्यु आपकी है। यह कैसी अद्भुत बात है। जब हम मसीह के हैं तो सब कुछ हमारी ही है, वर्तमान और भविष्य दोनों, और हम उसकी इस संपूर्ण संपदा के भंडारी हैं। आइए हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों के पत्र 4 अध्याय उसके 5 पद को। लिखा है, सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मानो कि मोतियों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। मेरे मित्रों, प्रभु ही न्याय करेगा। यदि हम किसी का न्याय करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम प्रभु का स्थान ले रहे हैं। यही कारण है कि हमें निंदा और आलोचना के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं दिखाना चाहिए। प्रभु निष्पक्ष न्याय करेगा क्योंकि वह सब तथ्यों से परिचित है। वस्तुतः हम अपने आलोचक से अधिक अपनी बुराइयों को जानते हैं। मसीह यीशु की उपस्थिति में अंधकार की बातें ज्योति में आ जाएंगी। वह मन की युक्तियों को प्रकट करेगा। अतः हमें अपने जीवन आचरण के बारे में अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब वह एक बड़ी अद्भुत बात को कहता है, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वह कोई न कोई ऐसी बात अवश्य प्रकट करेगा जिसके कारण प्रत्येक पवित्र जन की प्रशंसा होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एशिया माइनर की 7 कलिसियाओं को प्रभु ने सराहा है। केवल लौदिकिया की कलिसिया को उसने नहीं सराहा, क्योंकि संभवतः वह उसकी कलिसिया नहीं थी। कलिसियाओं की दुर्बलता के उपरांत भी प्रभु के पास उन्हें सराहने के कारण थे। मेरे विचार में वह प्रत्येक पवित्र जन के प्रति ऐसा ही अनुग्रह प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, वर्षों पूर्व की बात है, किसी कलिसिया में एक प्रिय महिला थी जो हर एक के बारे में प्रशंसा के शब्द कहती थी, और विशेष करके प्रचारक के विषय में। एक दिन वहां एक प्रचारक आया जिसने ऐसा घटिया उपदेश दिया जो उन्होंने कभी सुना हो। कलिसिया के सदस्य सोचने लगे कि इस महिला को उसके बारे में क्या कहना होगा। वे खड़े होकर उसे देखने लगे कि वह मुस्कुराती हुई उस प्रचारक के पास गई और उससे हाथ मिलाया और कहा, ओह पास्टर, आज आपका पाठ बहुत अच्छा था। मेरे मित्रों, हमारा प्रभु भी हम सब के लिए कुछ न कुछ प्रशंसनीय प्रकट करेगा। आइए अब हम आगे देखें व्यवहारिकता। पहला क्रंथियों के पत्र 4:6 में लिखा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलुस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। मित्रों, ध्यान रखें, क्रंथ की कलिसिया में एक समस्या विभाजन की थी, अतः पौलुस कहता है कि वह उन्हें यह बातें दृष्टांत की रीति पर लिख रहा था। पौलुस और अपोलुस मित्र थे, वे दोनों मसीह के सेवक थे और मसीह उनका था। दोनों ही अपने अपने वरदानों को व्यवहार में ला रहे थे। हम पहला क्रंथियों की पत्री 4:7 में पढ़ते हैं, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। क्या आपको वरदान प्राप्त है? अति संभव है कि आपका वरदान असाधारण हो, परंतु आपको घमंड नहीं करना है, क्योंकि वह परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। आपका वरदान आपने स्वयं उत्पन्न नहीं किया है। जी हाँ, हमें अपने वरदानों के लिए परमेश्वर को आभार व्यक्त करना है या परमेश्वर के लिए आभारी होना है। पहला क्रंथियों के पत्र 4:8-9 में आगे पढ़ते हैं, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। कलीसिया के उस शहादत के युग में प्रेरित संसार में गवाही थे, संसार में ही नहीं स्वर्ग दूतों और मनुष्यों में भी वे गवाह थे। मेरे विचार में आज यह हमारे लिए भी है। अन्यों ने परिश्रम किया और हम मित्रों उनके परिश्रम में सहभागी हुए हैं। अब पौलुस अपने कष्टों का वर्णन करेगा जिसके कारण हमारे पास यह पत्र है, जिसके अध्ययन का आज हम आनंद उठा रहे हैं। तो आइए आप मेरे साथ निकालिए पहला क्रंथियों के पत्र 4:10-3 लिखा हुआ है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं, लोग बुरा कहते हैं हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं हम सहते हैं, वे बदनाम करते हैं हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं के खुरचन की नाई ठहरे हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि सुसमाचार प्रचार में पौलुस ने कैसा कष्ट सहा था। उसने एशिया माइनर में सुसमाचार सुनाया। लिखा है कि एशिया माइनर में यहूदी और यूनानी हर एक ने परमेश्वर का वचन सुना। पहला क्रंथियों के पत्र 4:14-15 में आगे लिखा है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे प्रियो, पौलुस ही वह प्रचारक था जो उन्हें मसीह के विश्वास में लाया था। यह बड़ी ही सुहावनी बात होती है कि आप किसी के आत्मिक पिता हो जिसे आप विश्वास में लाते हैं। पहला क्रंथियों के पत्र 4:17 में लिखा है, इसलिए मैंने तिमोथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। देखिए पौलुस के मन में तिमोथियुस के लिए कैसा आदर है। आगे हम देखते हैं पहला क्रंथियों के पत्र 4:18-20 में, कितने तो ऐसे फूल गए मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि उनकी बातों में उसे रुचि नहीं है, वह उनके जीवन में सामर्थ्य प्रदर्शन देखना चाहता है। पहला क्रंथियों के पत्र 4:21 पद जो अंतिम पद है लिखा है, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके स्वभाव कामों से प्रकट होगा कि पौलुस को उनके पास आना चाहिए था या नहीं, क्या वह सुधार का डंडा लेकर आए या प्रेम और दीनता की आत्मा के साथ आए। मेरे मित्रों, आज आप किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को आपके पास आने का आमंत्रण देते हैं, क्या वह आपके पास कठोरता से आए या नम्रता व दीनता से आए, ये अलग बात है। लेकिन आज मेरे और आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रभु के पास आए और उसे अपने जीवन में जगह दें ताकि उसका प्रेम मेरे जीवन में आ सके। पौलुस आज कुरिन्थ की कलीसिया को इन सारी बातों के द्वारा बताना चाहता है कि परमेश्वर अभी भी उनके जीवन को चाहता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करें, आने दे अपने जीवन में उसे कार्य करने दे, और इतना ही नहीं हम भी एक आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में अनुभव और महसूस कर सकें। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप एक सही निर्णय लेंगे। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु के पीछे।